संसार में विषयों में भोगों में हमारी जो आसक्ति है ये मधु है। इस मधु का छेदन करने वाले भगवान हैं, गुरु जी हैं, इसलिए भगवान को मधुसूदन कहा गया है कृष्ण को। और एक मधु है कृष्ण के प्रति जीवों का जो प्रेम है उसको कहते हैं मधु। जीवों का कृष्ण के प्रति जो प्रीति है इसका नाम है मधु। विशेष करके गोपियों के का प्रेम जो है ये है मधु। उसका कृष्ण रसास्वादन करते हैं, सुदन माने रसास्वादन करना, इसलिए कृष्ण का नाम हो गया है मधुसूदन। कृष्णचंद्र जी प्रकट में प्रकट होकर के अधिकांश इस वन में आया करते थे, क्योंकि ये छठीकरा से स्थान बहुत निकट है। छठीकरा में नंद बाबा रहते थे और सब गोप ग्वाल सब रहते थे, और वहीं से आसपास की भूमि में ये पहले बछड़ुओं को और छोटी छोटी बछड़ियों को ये चराया करते थे सखाओं के साथ। पीछे से जब नंदगांव गए तब वहाँ से गायों का चारा आना आरम्भ हुआ और वहीं से सर्वत्र गायों को लेकर के जाते थे। जसोदा मैया जब कृष्ण को दासी तपस्वी हैं तो मक्खन चुराया दूसरों के घर में, आज अपने घर में मक्खन चुराया तो जसोदा जी कृष्ण को डांट रही हैं, तो क्या मक्खन चुराता है, हाथ पैर उनके हाथ बांधने लगती हैं। तो कृष्ण उसी समय में कहते हैं कि मैया मेरी प्यारी मैया, मैंने तो कभी मक्खन चुराया नहीं और हमने खाया नहीं। मैया मैं नहीं मक्खन खाए, तो अभी हमने मक्खन खाया कर, अरे भोर होते ही तूने सूर्योदय होने के साथ साथ पहले ही हमको तुमने मधुबन मोहित पठाए, मधुबन में तुमने हमको भेज दिया गायों के पीछे पीछे, और मैं सारा दिन भर चराते चराते शाम को यहाँ लौटा और यहाँ आकर के थक गया और सो गया, तो मैं मक्खन कब चुराया। यदि तू ऐसी कहती है ये मैंने ही मक्खन चुराया है और मुझे चोर चोर कहेगी तो सभी लोग हमको चोर कहेंगे। मालूम होता है कि तू मेरी मैया नहीं है, मैं तेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ, मैं कहीं हमको तुमने कहीं लावारिस माल पड़ते हुए कहीं से तुमने हमको पा लिया, अनेक मैं तेरा बेटा होता कोख से उत्पन्न होता गर्भ से उत्पन्न होता तो रोज हमें ऐसे एक साधारण दूध और दही के लिए हमको नहीं डालती, तो मैं तेरा पुत्र हूँ तो मैं घर से निकल करके चला जा रहा हूँ। यशोदा जी ये सुन करके भाव में अत्यंत विद्रोह हो गए और बच्चे को गोदी में ले लिए और बोली कि बेटा नहीं नहीं तुमने माखन नहीं खाया, मैं ऐसे ही कह रही थी। और रोने लगे, तू कहीं मत जा, तू हमारा बेटा है, मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, ठाकुर जी की सौगंध खा करके कहती हूँ तू हमारा ही बेटा है, तू दूसरे का बेटा नहीं। और इधर कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही माखन खाए, मैं नहीं माखन खाए, और फिर उलट जाते हैं। मैया बड़ी अब दुखी हो गई, इसलिए अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए, इसलिए कृष्ण अपना अपराध समाज स्वीकार करके करें, मैंने ही माखन मैंने ही मैंने आलू मैंने ही खाया। मैया तू रूठ नहीं बोले, तू रूठ मत जा। इधर कृष्ण भी उठ रहे हैं और मैया भी उठने लगी। इस तरह से कृष्ण ने कहा कि मैंने ही माखन खाया, अपनी बात को उलट दिया। यशोदा जी क्या कह रही है, यशोदा जी कह रही है जो मैं तूने नहीं खाया, मैं ही झूठ बोल रही, बस वो अपनी अपनी बात से वो मुकर गई और कृष्ण भी मुकर गए और दोनों रोते हुए परस्पर फिर गले से मिल गए। बेटा तूने नहीं खाया, कृष्ण कहते हैं मैंने ही खाया। तो कृष्ण गोचारण करने के लिए बछड़ों को चराने के लिए यहाँ पर आते थे, और यहाँ वन में आप देखेंगे अभी भी वन का थोड़ा सा भाग है, तो उसमें मधुमक्खियां खूब छत्ता लगाया करती और बलदेव कृष्ण शाखाओं के आ करके शाखाओं के साथ में इस साधारण लौकिक मधु का भी यहाँ पर पान करते हैं और सखाओं को जो प्यार परस्पर करते हैं और सखा लोग प्यार करते हैं तो उसका भी मधु पान करते हैं और गोपियाँ भी यहाँ पर मिल जाती हैं। वही पर कहीं राल ग्राम होगा, वही से दूर नहीं होगा, इसी के पास में तो वहाँ से गोपियाँ भी मिल जाती हैं और आश्रस्थली भी होगी। बचपन में कृष्ण का सब समय किशोर है और सब समय बचपन है, नित्य काल ही किशोर के रूप में है। इसलिए तो ये स्थान चारों युग से बतलाया, ये प्रसिद्ध है। सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और उनके लड़के उत्तानपाद और प्रियव्रत है, उसमें से उत्तानपाद की राजधानी यही मथुरा में मथुरा मधुपुरी में थी सतयुग में। और ध्रुव जी की विमाता ने कह दिया ध्रुव को, तुम यदि हम लोग वहां पर इस कथा को कहेंगे हम संक्षेप लौटला, तुम हमारे मर करके अभी और फिर हमारे गर्भ में आकर के जन्म लेगा तब राजा की गोदी में बैठेगा और राज्य तुमको मिलेगा, इतना सहज नहीं है, इस पर मेरा बेटा उत्तम बैठेगा तुम नहीं बैठेगा। बस ये छत्री का लड़का एकदम रोने लग गया, मैया के पास में गया। मैया ने कहा जी थोड़े से राज्य के लिए क्या तू रोता है, तो जा करके श्रीहरि कमल लोचन श्रीहरि की आराधना करो। बस वन में चला गया। अभी ध्रुव घाट के पास में, वहां पर ध्रुव घाट माने ध्रुव जी वहां पर मिले नारद जी से, नारद जी ने उनको दीक्षा मंत्र दिया और जमुना में स्नान करा करके इस स्थान पर भेज दिया। उस स्थान पर हम लोग जाएंगे, वहीं पर तपस्या करके नारायण को प्राप्त किया। ये हुआ सतयुग में। और उसके बाद ही में त्रेता युग आया। त्रेता युग में लक्ष्मण जी है, रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को इस स्थान पर भेजा था लोणासुर का वध करने के लिए। मधु दैत्य का वो लड़का लोणासुर था, बड़ा प्रतापी था, जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा कोई उसे मार नहीं सकता। इसके पिता मधु ने मधु सूर्यवंशी नरेश के लड़के थे, किंतु ये मद पिता और दुसंग में रहता इसलिए उसके पिताजी ने उसको त्याग कर दिया। इसलिए वो यहाँ आकर के राजधानी अयोध्या से आकर के यहाँ पर बनाया और वो किसी का द्वेष नहीं करता था, किंतु अयोध्या के नरेशों के का वो बड़ा भारी विरोधी था, उनका राज्य यहाँ तक था अयोध्या वासियों का। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को राज सिग्नल दे करके यहाँ पर भेजा और यहीं पर आकर के बड़ा घना घोर जंगल और इसका राजभवन वहीं पर था लोणासुर का, उसका डर था कि त्रिशूल लेकर के कोई उसको हरा नहीं सकता। इसलिए शत्रुघ्न जी ने जब वो जंगल में चरने गया और कितने बड़े बड़े हाथियों को मारा, सिंह को मारा, हिरणों को मारा और अपने भल्ले में उन सबको गूथ कर और कांवर जैसा बना लिया और सबको लेकर के वो आ रहा था अपने घर में घुसने के लिए। रास्ते में ही शत्रुघ्न जी धनुष मार लेकर के खड़े हो गए। जब देखा ये लड़ने के लिए आ रहे हैं तो कहा जे ठहरे, तू वीर है, एक बात करो, मैं अपने घर से अपना अस्त्र ले आऊं तब से तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें वीर वास्त्र के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करते, तू जब वीर है तो हमसे युद्ध कर। बस वो भी पाँव में आ गया, उषा में भर गया और यहीं पर लड़ाई हुई। उसके साथ में त्रिशूल नहीं था, शत्रुघ्न जी ने उसको यहीं पर मारा था। इसलिए शत्रुघ्न गोपाल जी का वहां पर मंदिर में हम लोग गए और उन्होंने मथुरापुरी को बसाया। वो मथुरापुरी आज जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है उसके पास में ऊंचे टीले है वहां पर थी और जमुना नदी भी इधर से बहती हुई उधर से जा रही थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि गोवर्धन के निकट जमुनावली नामक स्थान है, वहां पर जमुना जी बहती थी, बहती ठीक हो सकती है। कितने हजार करोड़ वर्ष हो गए, कुछ दिन में ही धारा बदल जाती है, तो करोड़ों करोड़ वर्ष में कोई भी ये जरूरी नहीं है कि वहीं पर धारा रहे। तो ये सतयुग में ये दो बातें थी, एक बात तो हुई भूवाली और दूसरी हुई यहीं पर अम्बरीश महाराज जी उज्जैन थे, वो वर्ष में कभी कभी आते थे, उनके यहाँ पर छावनी थी और वहीं पर आकर के एकादशी व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत करने के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया और लगातार कितनी एक वर्ष की एकादशी यहीं पर करेंगे। एकादशी पहले दिन कुछ नहीं खाते, दूसरे दिन मिल जरा और तीसरे दिन एक बार लेते थे ब्राह्मण वैष्णव को लेकर। तो वहीं पर दुर्वासा जी आ गए और पालन करने के पहले आए, बोले जब मैं भी यहीं पर पालन करूंगा और समय पर नहीं आकर के जमुना में स्नान करके लेट कर दिया, देर हो गए, उनकी एकादशी समाप्त होने वाली थी, व्रत नष्ट हो जाएगा जो दुर्वासा को ठीक से पालन नहीं करे, इसलिए उन्होंने पानी केवल ठाकुर जी को स्नान करा करके चरणामृत पान कर लिया, तुलसी भी नहीं लिया। पानी करने से व्रत भी होता है और पानी लेने से व्रत नहीं भी होता है, दोनों बातें होती है। चरणामृत ले लिया जाए तो उसका पालन करना हो गया यदि वो निर्जला उपवास है, और यदि उसने कुछ खाया है फल मूल कंदर पानी तब तो पानी से नहीं होगा, तो वो निर्जला उपवास थे, इसलिए एक दो बूंद चरणामृत का पानी केवल ले लिया। इतने में दुर्वासा यहाँ आ गए और बड़े बिगड़े और अपने केस से एक केस तोड़ करके फेंक दिया। कृत्या राक्षसी हुई, उनको जलाने के लिए आई, भगवान का चक्र देख रहा था, भक्तों की रक्षा करता है, बस उन्हें कृत्या को वही जला दिया, दुर्वासा के पीछे छिप पड़ा। दुर्वासा ब्रह्मलोक और 14 दोनों को पार करके ब्रह्मलोक में गए, नारायण लोक में गए। उन्होंने कहा कि मैं भी रक्षा नहीं करूंगा, तुम जाओ अम्बरीश से क्षमा मांगो। फिर वहां से लौट करके आए, अम्बरीश एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे बिना खाए पिए, एक वर्ष उनकी एकादशी हो गई। इसके बाद में दुर्वासा इनके चरणों में गिर गए और ये भी उनके चरणों में गिर गए। फिर दुर्वासा को खिलाया पिलाया बड़े आदर के साथ में, और तब दुर्वासा जी कहते हैं अहो अनंत दासानां, आज मैंने उनका प्रभाव देखा, जिस चीज को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, ब्रह्मा ने और शंकर ने शरण नहीं दी हमको, आज अम्बरीश महाराज ऐसे महान व्यक्ति हैं, इसलिए उनके चरणों में गिर गए। इसलिए भक्तों की बड़ी भारी महिमा है, यदि कोई भगवान का नाम आश्रय ले लिया उनको कोटि कोटि ब्रह्मा से भी अधिक समझो, उनका कभी भी अनादर मत करो, उनका सब समय आदर करो। तो ये सब घटनाएं यहीं पर सब हुई थी। इसके बाद में त्रेता युग में रामचंद्र जी ने वो उसका किया, और द्वापर युग में कृष्ण जी अपनी लीला यहाँ पर ये सब की, और सत्ययुग कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये कृष्ण ही और बलदेव जी है यहाँ पर पधारे। नित्यानंद प्रभु तो गायों को देख करके और उनके पीछे दौड़ पड़ते थे, सखाओं को देख करके लिपट जाते थे और कृष्ण कृष्ण करते हुए खोजते थे। बलदेव प्रभु जी द्वारका से जब यहाँ आए तो गौर वर्ण के थे, जब यहाँ आए तो अब कृष्ण को खोज रहे हैं किंतु कृष्ण कहीं नहीं मिल रहे, कन्हैया कन्हैया कर रहे हैं और उनके आवेश में काले बन गए, गोरे दाऊ जी से काले दाऊ जी। यहाँ कितनी भोली भाली मूर्ति यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यदि प्रेम के साथ में और अच्छी तरह से देखेंगे मालूम होता है 3-4 वर्ष के छोटे से ये दाऊ जी हैं, और कुछ विरह में कुछ मुरझाया हुआ सा मुख इनका यहाँ है। यहाँ आए होंगे ना तो उनके बचपन की गोचारण की लीलाएं याद आई हुई, और उसी भावना में बह करके एकदम काले भी हो गए, मुख भी सूखा हुआ, और कितने किशोर नहीं बल्कि बालक जैसी उनकी मूर्ति भोली भाली इनकी दिखती है। तो ये द्वापर युग में भी कलयुग में भी सतयुग में भी समस्त युगों का ये स्थान प्रधान स्थान है, हम लोग इसीलिए आए हैं। यदि कृष्ण प्रेम की एक बूंद भी एक कण भी जो गोपियों के मुख से वो जो निकला हुआ मधु है कृष्ण का पान कर रही है, और गोपियों के मुखार बिंद से एक छींटा भी यदि कहीं बाहर निकल गया और वो धूलि में भी सूख गया तो वो धूलि को भी अपने सिर पर अपने मुख में देकर के हम उस प्रेम की वासना करते हैं, कामना वासना करते हैं। आप लोग भी यही करेंगे यदि जन्म हो, आप गोकुल के में कहीं हो, गोकुल में जन्म हो और कृष्ण के सखी के रूप में, दासी के रूप में हम लोग जन्म ग्रहण करके हमारी अभिलाषा पूर्ण हो। और यदि हो सके, भगवान यदि कृपा करें, ये भूमि कृपा करें, तो कृष्ण की प्रकट लीला में भी हम लोगों का इसी स्थान पर कहीं इधर उधर वही हो जाए और उनकी इस भावना को हम लोग प्राप्त कर सकें। यही प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी भोग लगेगा, जल्दी से भोग लगाओ।
आपके मुझे
आपके मुझसे बोलने का तुम इच्छुक है। मधुबन में आए, हमने बतलाया था कि सत्य के प्रारंभ में ये पर उत्पान पांच राजा थे, तो ये मथुरा का मथुरा नहीं होंगे, ये तो सब मधुबन का अंतर्गत थे। श्याम श्याम राधे राधे, हम लोग श्याम की प्रार्थना करते हैं। राधा जी सुन जादो,
हम राधा जी से कहते हैं
हम लोग राधा जी से मिला उनकी सेवा के लिए।
आप ये बताओगे हम ये सुधार बोले हैं, इसीलिए हम आपकी सेवा, अगर हम बोले हैं
प्रार्थना करते हैं। कृष्ण की प्रार्थना नहीं थी, ऐसा हमको करना है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हम लोग को ऐसा करना है कि कृष्ण अपने आप खींचे चले आएंगे। यदि राधा जी की कृपा हो गई तो कृष्ण अपने आप खींचे चले आएंगे। इसलिए राधा जी को प्रसन्न होने के लिए यहाँ के ब्रज के वासी लोग सब सतत प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मधुबन में आए हुए हैं, यहाँ पर ध्रुव जी का स्थान है, सत्य की बात है। उत्तम सागर राजा की दो स्त्रियाँ थी, बड़ी वाली सुनीति और छोटी वाली का नाम सुरुचि। तो माता जी कहीं बैठा लगता सामने होता है ये संसार के प्रति रुचि, कौन चीज अच्छी है उसके प्रति रुचि होती है। और सुनीति जो सुंदर नीति है, सबसे श्रेष्ठ नीति भक्ति नीति है। भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी सुंदर नीति है। हमारे श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में बतलाया गया है कि जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद हैं उनमें विधि और निषेध है। कुछ विधियां हैं और कुछ निषेध। जो कुछ जैसे भी इसमें जैन के प्रकार कृष्ण मनोनिवेश है, किसी भी प्रकार से कृष्ण में चित्त को लगाना ही, स्मरण करना ही एक प्रधान विधि है। इसके अंतर्गत में सब इसके नीचे अंगत विधियां हैं। और निषेधों में है कृष्ण को कभी न भूलो, ये निषेध है। तो सबसे सुंदर नीति है भगवान का भजन करना। तो इसलिए वो सुनीति थी, वो बहुत भजन करती थी। और सुरुचि विषय में लालसा रख करके जो अच्छा लगता है अपात मधुर, उसमें रुचि उनकी है। वो भगवान का भजन नहीं करती थी, उन पर इतना विश्वास नहीं था। वैभव की ही कैसे वैभव मिले, बस इसी की उसकी रुचि रहती थी, रुचि रहती थी। सुरुचि के गर्भ से ध्रुव जी हुए और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का एक लड़का हुआ। दोनों जब कुछ बड़े हुए तो एक दिन राजा अपने राजभवन में बैठे थे सिंहासन पर, उत्तम की गोदी में था और ध्रुव खेलते हुए बच्चों के साथ में वहां पर उपस्थित हुए और पिता की गोदी में वो भी बैठना चाहे। उसी समय में सुरुचि आ गई और डांट करके बोली तुम अपने पिता के गोदी में बैठने योग्य नहीं, तुम मरो और मरने के बाद में फिर हमारे घर पे जब भी आएगा तो इस पिता की गोदी में बैठेगा। और उसने दुत्कार करके भगा दिया। राजा कुछ पत्नी के वशीभूत था, वो बहुत ही हृदय में उसको दुख तो लगा किंतु रानी के भय के कारण कुछ न बदल सका। जैसे महाराज दशरथ जी, दशरथ जी ने कहा था कैकई के माता और पिता की बात कह करके समझाया था, तो भी कैकई के भी पिताजी ऐसे ही थे, वो अपनी पत्नी के वशीभूत थे। पत्नी यदि कुछ नीति के खिलाफ भी कुछ कहती है तो राजा मानने के लिए बाध्य है, ऐसे ही है बाध्य थे। मन महसूस करके रह गया और तो उसको ध्रुव को गद्दी में नहीं बैठा सके, तो रोता हुआ अपनी मैया के पास में चला गया। उसकी मैया कुछ पिताजी छोटी के वशीभूत थे, पीछे से शादी हुई, कुछ वो नव ज्योति थी, उसके प्रति आकृष्ट थे। संसार के लोग चार प्रकार के नशे में रहते हैं, सौंदर्य का नशा, खूब सुंदर हो, धन का नशा, विद्या का नशा और उत्तम कुल में जन्म लेने का नशा, और अभिमान तो दूर हो जाते हैं किंतु ये नहीं। और इनमें सबसे बड़ा नशा धन का होता है। उन्होंने अपनी बड़ी स्त्री को अलग कर दिया था, अपने राजभवन से अलग, और वहीं पर वो रहते थे। वो अपनी मैया के पास में जाकर के रोने लग गया। मैया ने सांत्वना दी, बेटा तुम्हें तुच्छ राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए और तुम इस प्रकार से रो रहा है, दुखी है, तुम कमल नयन हरि का भजन करो, वो नारायण है, सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तुम उनकी गोदी में क्या बैठा, तुम उनकी गोदी में बैठो, जाओ उनकी तपस्या करो। कहाँ है वो, सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं, जहाँ उनको प्रेम से बुलाया जाएगा वहीं पर आ जाएंगे। बस थ्री जी उसी समय रात में उठे और चले आए मधुबन में, यमुना के किनारे को भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को, और नारद जी वहाँ पर प्रस्तुत होकर बोला, छोटा सा बच्चा तुमको समाभिमान, अरे पिता तो है, तुम इसे शासन करेंगे, कभी गोदी नहीं लेंगे, कभी गोदी लेंगे, तो तुम इतना क्रोधित हो गया, इतना अभिमान करना अच्छा। बहुत तरह से समझाया, वन में जंगल में पशु तुझे खा जाएंगे सिंह भालू, तुम लौट जा, तुम माना नहीं। तब फिर उसको मंत्र दिया, उस मंत्र को आप सभी लोग जानते हैं, और कहा जे तुम मधुबन के अंतर्गत में निर्जन स्थान में एक टीला है, वहां पर चले जाओ और वही तरह करके भजन करो, ये मंत्र करना और भगवान का ध्यान लगाना। संत चक्र गदा पर लिए हुए हैं, बड़ी श्याम मूर्ति है, तुम जा करके थोड़े दिनों में ही तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। उसको उसका तरीका भी बतलाया और वो वहां से आए यमुना में स्नान करके और इसी टीले के ऊपर में अपना आसन लगाया। पहले 7 दिनों तक, 1 महीने तक उन्होंने पेड़ से गिरी हुई पत्तियों को खाना आरम्भ किया, पेड़ को भी कष्ट ना हो और वे सुखी मुखी इधर उधर से फल मिल, जो कुछ टेटी फेटी जो कुछ मिल जाता होगा वो मिल गया सुखा। दूसरा महीने में उसको भी बंद कर दिया, पानी लेना आरम्भ किया, वो भी कुछ दिन अंतर से 7-7 दिन पर या कुछ दिन पर। उसके बाद में तीसरे महीने में उन्होंने वो भी बंद कर दिया 15 दिन में। फिर इसके बाद में फिर उसको भी बंद कर दिया,
1 महीने
में एक बार केवल सांस अब केवल लेने लगे। इसके बाद धीरे 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 आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा,
ध्यानुस्मृति,
इसके बाद में समाधि आएगी। अब धीरे 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 उनका चित्त एकदम पवित्र होने लगा, दिशा वासनाएं वहां से सब निकल गई, हृदय जब निर्मल हो गया तो एकदम ध्यानस्थ हो गए। ऐसी निर्विकल्प समाधि लगी कि उसमें भगवान से रहा नहीं गया और झट उनके अंदर में हृदय में प्रविष्ट हो गए। ध्रुव जी खुद आनंद के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं, हठात भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के बाहर में आ गए। उसके बाहर दर्शन देना चाहते हैं। वो घबरा गए, मानो मिला हुआ कोई रत्न दिग्गर हाथ से निकल जाए, ऐसे इनकी स्थिति छत पकाने लगे। आंख खुला देखा जो वही नारायण मूर्ति के भीतर में थी, एकदम निकल करके सामने देख करके आनंद से भी भोर हो गए, आंख से आंसू की धारा गिरने लगी। कुछ भगवान की स्तुति करना चाहा, किंतु कुछ जानते तो है नहीं। भगवान ने समझ करके और उनको अपना शंख स्पर्श करा दिया, और स्पर्श करने के साथ ही साथ में धाराधार निकालने लग गई। ऐसी सुंदर स्तुति की भगवान एकदम प्रसन्न हो गए और उनको दर दे दिया। 36,000 वर्ष पृथ्वी का एक छत्र राज्य करेगा भूमंडल का। अंत करके जब अंतर ध्यान हो गए, उनका ध्यान होने के बाद ही मैं अब उनकी आंख खुली। भगवान का दर्शन का यह अमोघ फल है। दिशा वासनाएं, स्वर्ग का भी लालसा, यहाँ तक की मुक्ति की लालसा भी एकदम दूर हो जाती है। हम समझते हैं कि सांसारिक भोग की लालसाओं की अपेक्षा मुक्ति की वासना अधिक भयंकर और भक्ति विरोधी होती है। इसलिए वैष्णव लोग, भक्त लोग भगवान की मुक्ति दिए जाने पर भी उस मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। ये भक्ति का, भक्ति में तो मल नहीं होता, किंतु भक्ति का मल कहा गया है मुक्ति को। किसलिए मल? औपाधिक भक्ति का, उत्तमा भक्ति, शुद्धा भक्ति, भगवत प्रेम रूपी जो भक्ति है उसका तो कोई मल नहीं, किंतु औपाधिक भक्ति में जो कर्म और ज्ञान मिश्रा जो भक्ति होती है, उसका कर्म जब रह जाता है और ज्ञान मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव, तब ये मल है। वैष्णव लोग ऐसे मल युक्त मुक्ति कभी नहीं ग्रहण करते। अब रोने लग गए, प्रभु आपने हमको ठग दिया, मैं अबोध था, मैं कहीं चिंतामणि की खोज कर रहा था, चिंतामणि खोज में आप हो और आपको खोज रहा था, खोजते खोजते कांच का टुकड़ा खोज रहा था। कांच का टुकड़ा मैंने राज्य सिंहासन पर गई है, ये कांच का टुकड़ा है, कोई कुछ मूल्य इसका नहीं, तो मैं उसे खोज रहा था और खोजते खोजते हटा चिंतामणि हाथों में आ गई और वो छलक करके कहीं, छिटक करके कहीं गिर गई। ऐसी मेरी दशा है, मैं बड़ा दुखी। हमने क्यों 36,000 वर्ष का राज्य लेने गया? 36,000 वर्ष हमारा बेकार ऐसा यूं चला गया, और 36,000 वर्ष में भगवान की सेवा करता कितनी सुंदर बात होती। भक्त लोगों को यदि कोई मान ले कि 100 रुपया प्रणामी दे दिया ना, तो उसने तो समझा कि हमने इनको कृतार्थ करके निहाल कर दिया, और वो समझते हैं क्या अब इसे 100 रुपये को रखने में या खर्च करने में हमारी एनर्जी सब गई, अब उसे कहाँ रखेंगे, ये तो चिंता होगी। अब इतने मिनट का समय भगवान का से हम अलग हो गए, और यदि रखा बीच बीच में देखेंगे हम लोग जो कहाँ गई, और यदि उसका कोई खर्च करना है तो भी बर्बाद हो गया समय। इसलिए वैष्णव लोग अकिंचन निष्किंचन होते हैं, उनको उनका धन भगवान केवल है। इसलिए जब हाय हाय करने लगे उनको, तो किंतु 36,000 वर्ष राज्य करना है तो फिर कैसे राज्य किया, राज्य यूं किया, भगवान का समझ लिए यह राज्य, हमारे पास केवल उनकी थाती रखी हुई है, ऐसा समझ करके और उसको भगवत भक्ति के प्रचार में लगाया। ऐसे ही नहीं, भगवत भक्ति के प्रचार में लगाया और लगा करके पीछे से ऐसा किया। अब उनका जब भगवान चले गए, इतने में नर जी ने जाकर के राजा को संवाद दिया, अरे आपका लड़का तो कृतार्थ हो गया, और वो रो रहे हैं जो मैंने बच्चे को गोदी में लिया, वो जंगल में चला गया, मैंने पशु पक्षी उसे खा गए ना क्या हुआ, उधर में वो रो रहे थे। नारद जी से सब सुना, जैसे वो कृतार्थ हो गया, भगवत भगवान का दर्शन हो गया, और वो लौट रहा है तो बड़े बड़े रथ इत्यादि लिए, घोड़े लिए, हाथियों पर सब एक शोभा यात्रा बनाई, और उसमें सबको लेकर के उसकी अगवानी करने के लिए स्वयं राजा गए, और वो आ रहा रहे थे अगवानी करके, और फिर उनको ले आए राज्य में। ध्रुव जी का पहला काम यह हुआ, अपनी मैया से मिले, उनको प्रणाम किया और बोले, मैया राजा और रानी को कोई कष्ट मत, जबकि हमें राज्य दे रहे हैं मैं लूंगा, क्योंकि इन दोनों की पहले व्यवस्था करनी है, उत्तम की और सुरुचि, इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, और वैसे ही उनको रखा राज्य पाने पर। राजा वो राज्य उनको देकर के वो तो चले गए तपस्या करने के लिए, और ये राजा तो ये हुआ कि प्रकृतम का सब समय ख्याल रखते थे, हम लोग रहते तो इसी के लिए हमारा बनवास हुआ था, हम तो पहले उसे बदला लेते, किंतु वैष्णव ने बदला की कहीं तनिक भी कोई ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। और सब गुण लग जाएंगे काम में, काम क्रोध लोभ मद मोह ये काम में लग जाएगा, किंतु मात्सर्य जो दोष बुद्धि है कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगती या वैष्णव की सेवा में नहीं, क्योंकि इसको दूर रखना है। इसके बाद में एक दिन वो शिकार खेलने गया और उसी समय में किसी जानवरों ने उसे मार डाला, उन्हें मार डाला। अब ये उधर में गए और चक्षु पर कुबेर पर आक्रमण कर दिया, बहुत भीषण युद्ध हुआ, बहुत से लोग मारे गए। उसी समय देवताओं ने या इन लोगों ने जाकर के उनको कुबेर को कहा और कुबेर आकर के इनको समझाए, ये आप तो भक्त हैं, आप इन लोगों को क्यों मार रहे हैं उत्तम के लिए, उसका यही तो इसी से मरना था, उसका यही तक कर्म था, इसलिए आप उसे बदला लेने की भावना न रखें। अंत में उन्हें छोड़ दिया और फिर उन्होंने उन पर कृपा की और फिर अपने राज्य में आए, 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और ऐसा सुंदर राज्य किया और अंत में उनके लिए विमान आया 36,000 वर्षों के बाद और मृत्यु के ऊपर में उन्होंने पैर रख लिए, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं हुई, सशरीर वो विमान में बैठ करके जा रहे थे। उन्होंने कहा जी मेरी मैया कहाँ है, जज मैं कैसे जानता नहीं, जिस मैया के लिए मैंने भगवान को पाया और उस मैया को छोड़ करके मैं नहीं पाया। भगवान ने कहा जी देखो ये और दूसरे विमान पर चढ़ करके वो जा रही है तुमसे पहले, तुम कोई चिंता मत करो। तब उनको धो कर दिया, बैकुंठ ही जो इस भूमंडल के अंतर्गत में ब्रह्मांड के अंतर्गत में एक बैकुंठ है, ये यही रमाप्रिय बैकुंठ है, इसी में वो ध्रुव जी रहते हैं और सब ग्रह चंद्र सूर्य इत्यादि सब उसकी परिक्रमा इत्यादि करते हैं। तो ध्रुव जी का चरित्र ऐसा ही भीमत है, उनका चरित्र सुनने से भक्ति होती है, इनकी तपस्या स्थली है। अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे और फिर जाने पर हम लोग
मेरी बिल्कुल
आइए आइए
पास ही नहीं क्या आश्रम में छोटे पहला मुझे जान रहे थोड़ी थोड़ी याद चलिए और तुरंत ही चलिए
सभी सदर के फिर
हम उनके आसन पर उतर गए थे, हम बिल्कुल उनके गाड़ी में उनके गाड़ी में रहते हैं, ये क्या चार बहुत ही पास में है, आप लोग नहीं बैठे हैं आप चले अगर हम साथ ही बैठे
इसलिए मैं नहीं गया। देखा ना काशी गली है सकरी गली, ये सकरी गली है राधा और कृष्ण के यहाँ पर, हाँ एक तो दूर बस 10 घंटा कूद दिए। देखो यहाँ पर दो दल भी भक्त हो गया, एक मधुमंगल जी का और कृष्ण का दल उधर से कृष्ण की तरफ में देख रहा है और हम लोग इधर से राधा जी की तरफ में देख रहे हैं, तो उधर में जो है वो कृष्ण का दल है और इधर में जो है अभी से जो दल बदलना चाहता है वो दल बदल ले। बदल लो नहीं तो फिर किसी दल बदल नहीं होगा, आपको बदलाने से नहीं होगा। सुनो तो यहाँ वो मधुमंगल जी है उनका दल उधर में है, तरह तरह की विचित्र लीलाएं हुआ करती थी। कभी यहाँ पर कृष्णचंद्र जी सखाओं को लेकर के और सकरी खोरी में उधर से गोपियां आ रही है चिकशौली से, चिकशौली उधर में है, राधा जी की शैलियां उधर में रहती है, उधर से इस पार में आती है कभी मक्खन दूध इत्यादि लेकर के हरिया, और कृष्ण वहीं पर अकेली घेरते हैं और उनसे दान लेकर के तब इधर जाने देते हैं, ऐसा नहीं जाने देते। कभी कभी ऊपर में चढ़ जाते हैं और गोपियां जब दही का भांड लेकर के जाती हैं तो कृष्ण ऊपर से कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर के उनके हंडी के ऊपर में फेंक देते हैं, तो जैसे ये है ना ये हंडी थी देखो सब
फिट करके दी जाती थी और गोपियां दधी से स्नान कर लेती थी और मक्खन से। गोपियां ने सोचा जी हम भी इसका बदला लेंगी, इसलिए ललिता जी को अपना सेनापति बनाया, अधिपति बनाया। ललिता विशाखा जी अपने हजारों लाखों सखियों के साथ में यहाँ की झाड़ियों में दोनों तरफ में छिप गई, ऐसी छिप गई जो कहीं से अभी देखते हैं जो कितना घना ये है और उसमें इसकी क्या पूर्व शोभा होगी। सबक ही कुंज कुंज बने हुए थे, सब सखियां चारों तरफ में यहाँ पर छिप गई और एक सखी को मक्खन का या दही का भांड लेकर के और उसको भेजा दे तुम इधर से आना, और यदि सखाओं ने यदि तंग किया तुम्हें तो तुम कोई अव्यक्त शब्द करना, चिल्ला देना थोड़ा सा और हम सभी निकल करके तो फिर कृष्ण और उनके सखाओं को देख लेंगे। पहले से ये व्यवस्था थी, एक गोपी इधर से धीरे धीरे निकली, मधुमंगल कृष्ण श्रीराम सुबल इत्यादि ने उनकी डगर यहीं पर रोक ली, उनका मार्ग यहीं पर रोक लिया और तभी इत्यादि का दान करने के लिए उसे विवश किया। उस सखी ने अव्यक्त रूप से कोई शब्द किया और चिल्ला दिया जिससे कि लाखों गोपियां यहाँ से निकल आई और कृष्ण श्रीराम इत्यादि सबको उन्होंने पकड़ लिए और इनकी चोटी उन पेड़ों में लेकर के बांध दिया। मधुमंगल हाथ जोड़ कर के उनके चरणों में पड़ने लग गया, किंतु उन लोगों ने माना नहीं। ताजे आज एक दिन में ही ऐसी शिक्षा देंगे जो फिर ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसलिए उनकी चोटी को तो पेड़ों में बांध दिया, कुछ तो भाग निकले और कुछ को गुलचे से मार करके गाल फुला दिए। इस तरह से यहाँ की लीला हुई और क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिए और लहला एक कहीं से मंगा लिया और ऊपर से चुंदरी और कृष्ण को गोपी छोटी सी सजा कर उनके मांग भर दिए और उनको जोर से उठा करके पकड़ करके चारों तरफ से और उनको लहंगा पहना दिया और चुनरी लगा करके उनको गोपी बना दिया और उनके सिर पर मलकी दधी की दे दी और दे करके उनको दोनों तरफ से पकड़ करके इधर से ला रही हैं और ऊपर से ललिता विशाखा जी ने पत्थर के टुकड़े उस पर फेंक दिए और वो टूट गया। कृष्ण दधी और सबसे स्नान कर लिए, सब गोपियां ताली बजा करके हंसने लगे। इस तरह से कृष्ण बोले जी आज से ऐसा कभी नहीं करूंगा और किसी गोपी को तंग नहीं करूंगा, बस उनके कान पकड़वाए और तब जा करके छोड़ा। ऐसी ऐसी लीलाएं ये सब होती थी। जो भी किसी को गैया का बच्चा होता है या भैंस को बच्चा होता है, लोग दही पहला और दूध यहीं पर चढ़ाते हैं अभी भी ऐसी। और यहाँ पर वो राधिका जी के जन्म के समय में ये सब चकरी खोरी की लीला और सब लीलाएं यहाँ पर होती हैं, लाखों लोग यहाँ पर भीड़ हो जाती है, कहीं भी तिल धरने की जगह नहीं होती। हम लोग का परम सौभाग्य है, कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य राधा जी के चलो चारों तरफ उन्हीं की धूली है। कृष्ण यहाँ पर राधिका जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसी धूली में हम लोग आते हैं।